الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني قد جئتكم بآيات من ربكم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیب من ذانت بالرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے فرمائیں گے, قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی دلائل لایا ہوں. آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ ہے جہاں اللہ جل شانہ نے یہ حصہ عطا فرمایا ورسولاً الی بنی اسرائیل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. اگلا حصہ جو آیہ کریمہ کا ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خرق عادت حصے معجزات کی صورت میں عطا فرماتے ہیں. خرق عادت وہ معاملہ یا وہ امر ہوتا ہے جو بالعموم نہیں ہوتا, ہٹ کر ہوتا ہے, جو ظاہری پہلوؤں میں سمجھ نہیں آتا, اس کے اسباب ظاہری پہلوؤں کے ویسے نہیں ہوتے جیسے بالعموم ہوتے ہیں. اور اسی میں یہی پہلا حصہ جو آیہ کریمہ کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا معجزات کا, ارشاد فرما انی اخلق لکم من التین کہیات الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ یعنی جاندار پرندہ بن جاتا ہے. اب یہی حصہ اس آیہ کریمہ کے جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل لایا ہوں. اب یہ وہ حصے ہیں جو بالعموم نہیں ہیں, اور نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی معجزے کا ظہور ہوا ہے وہاں حق کا جو بیان فرمانا ہے باطل کے مقابل اسے ثابت فرمایا گیا ہے. اور یہی خرق عادت معاملات جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں اولیاء کی نسبت ہمیں نظر آتے ہیں یا ہم واقعات سنتے ہیں تو وہ اسے کرامات کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء جو ہے یہ تحت ہے اور بطور توارث ہے, اور جہاں بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آتی ہے تو وہ اسے اللہ جل شانہ نے ذاتی طور پر عطا فرماتے ہیں, وہ ان کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں اسے. لیکن جو امتی ہوتا ہے وہ بطور وارث توارث اسے چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اور اللہ کا نبی جو ہے اس کا ہر پہلو جو ہے جہاں حق مخلوق تک پہنچ رہا ہے وہ سارا حق بھی ہوتا ہے, اور اس میں کسی سطح کسی درجے کی کوئی غلطی یا اس کا امکان نہیں ہوتا. اسی طرح جب کرامات اولیاء کی بات آتی ہے تو بے شک یہ حصہ کہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں ہوتی رہی ہیں اور اللہ کریم کو منظور ہو تو ہوتی رہیں گی. عمومی زندگی کے حصوں میں بھی یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک حصہ ایسا ہے جو شاید دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ذات کے لیے ہوتا ہے, خرق عادت معاملہ پیش آتا ہے. ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا, ایک ہے پیش آنا. اس پیش آنے میں مخفی حصہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے انہیں کئی ایسے معاملے پیش آتے ہیں جو انہیں تقویت دیتے ہیں اور یقین نصیب ہوتا ہے. اس میں ایک حصہ آپ اسے مشاہدات کی نسبت بھی لے سکتے ہیں. اب دونوں پہلوؤں میں خرق عادت معاملہ جہاں اس کا ظہور ہوتا ہے وہاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس کا کوئی جز یا کوئی اکائی کسی کو ذاتی حیثیت میں نصیب ہوتی ہے, اسے بھی جتنی بار سنا یا دیکھا گیا ہے وہ اس فرد کو تقویت نصیب ہوتی ہے اس خرقِ عادت معاملہ پیش آنے سے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کسی ذات کا مقصود سوائے اللہ کے کہ کوئی اور ذات مقصود ہو منوانا کہ وہاں بات معجزات کی جائے یا کرامات کی جائے, چونکہ معجزات کی نسبت انبیاء اور رسول کی طرف ہے, وہ معصوم عن الخطا ہیں. وہاں جو معترض ہے وہ خود شیطنت میں مبتلا ہے, کیونکہ کوئی جواز نہیں رہتا نہ کوئی ظاہری پہلوؤں میں اور نہ کوئی باطنی پہلوؤں میں. وہ ایسے اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ہیں اور معصوم ہیں, اللہ کریم کا ان پر خصوصی انعام اور عطا ہوتی. جہاں بات اولیاء کی آتی ہے, امتی کی نسبت آتی ہے, وہاں میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ وہاں معصومیت نہیں ہے, حفاظت کے پہلو عطا ہوتے ہیں. لیکن معصومیت اور حفاظت کے مابین جب آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے. یہاں قصبی حصے داخل ہوں گے, وہاں حصہ واہ بھی داخل ہے. تو جہاں قصبی حصے داخل ہیں وہاں کی کمی بیشی اثر مرتب کرے گی, واہ بھی حصے میں کلی طور پر عطا ہے. یقیناً ہر پہلو ہر شے اللہ عطا فرماتے ہیں, جو کچھ وہ عطا فرما رہا ہے وہ ہمارے سجدوں یا رکوع و سجود کے افزانے میں نہیں ہے, اس کی شان ربوبیت ہے. یہاں یہ دیکھیں نا مِن رَبِّكُمْ, کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی قوم کو معجزات کا اظہار فرمائیں گے, اسے بھی فرمایا مِن رَبِّكُمْ, کہ پروردگار کی طرف, تمہارے پروردگار کی طرف, یعنی اللہ کریم جو تمہارا پارنحال ہے, اللہ کریم جو تمہاری ضروریات پوری فرمانے والا ہے, اسی نے یہ معجزات بھی عطا فرمائے, اسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اور یہ سارا عمل تمہاری تربیت تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے. ہاں, جو بات فیصلے کی ہے یا انتخاب کی ہے تو یہی وہ حصہ ہے جو امتحان ہے, کہ یہ جو انسان ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, اسے اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کس راہ کا وہ انتخاب کرتا ہے. تو جب بات معجزات کی آئے گی تو معجزات اللہ کریم جہاں جہاں اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہاں حق کی سربلندی کے لیے فرمائے, اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمانی ہے. اور یہ جو آیا اگلا حصہ آیا کریمہ کا ہے, اور یہ کہ میں تمہارے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں, تو طبابت بہت عروج پر تھی, یعنی بہت اچھے طبیب تھے اس زمانے میں بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت جادوگری کا زور تھا, اللہ کریم نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اس سے جادوگر جو ہے وہ ہیچ ہو گئے اور ممکن نہ رہا کہ مقابلہ تو کجا, جو اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے کروایا اسے سمجھ بھی نہ پائے. اس لیے کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو وہ حیت نہیں بدلتا, کسی شے کی حیت نہیں بدلتا, یعنی اس کی اصل نہیں بدلتی. ایک پردہ بنایا جاتا ہے جسے دیکھنے والے پر جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس شے پر اثر نہیں ہوتا, جو دیکھ رہا ہے اسے اس پر اثر کیا جاتا ہے, اس کا ہوش جو ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے, اسے اس کے دیکھنے میں اس کو پردہ سا ایسا قائم کیا جائے. لیکن جو عصا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ڈالا وہ عصا, وہ اصل جو لکڑیاں اور وہ شتیر لائے تھے وہ انہی کو نگل گیا, اس کا اصل نہ رہا وہاں. اور یہ وہ بات ہے جو جادوگروں کی سمجھ سے بالا تھی हमने जादू किया, अगर इनका जादू और हमसे ताकतवर हो तो ये हमारे जादू को ख़त्म कर दें और वही जो कुछ हम दिखा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और उनकी असल शक्ल सामने आ जाए कि वहाँ जो है दरबार में लकड़ियाँ पड़ी हों या शातीर पड़े हों। लेकिन ये अजीब बात है कि न सिर्फ हमारा जादू ख़त्म हुआ बल्कि जो कुछ जादू की मुआवनत में हमने डाल रखा था उसका असल भी जाता रहा। और जब उसका असल जाता रहा और वापस आपने अपना असा उठाया और वो अपनी असल शक्ल में चला गया और वो सारा कुछ कहाँ गया, कोई वजूद ही ना रहा उसका। अब ये जादू ये नहीं कर सकता, जादू तो एक धोखा है, तो धोखे से ये चीज़ें मुमकिन नहीं। तो इसी तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक है तो इस ज़माने में तबाबत बहुत आम थी और बहुत मंजे हुए तबीब थे। आज तो तिब जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ये जो जिद्दत है मेडिकल साइंसेस की सूरत में उसी को आम किया जाता है और उसी की तहकीक या उसी को जितना भी उस पर मेहनत है उसी को इख्तियार किया जाता है। हालांकि हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ की जो देसी तिब थी वो बेहतरीन इलाज था। ये जो जदीद तर्ज है दवा का इसमें जरा ही जो है ये बहुत आला है, लेकिन जब दवा की बात करते हैं तो एक बीमारी जो है वो तो बेहतर होती है, साथ दो और बीमारियां शुरू हो जाती हैं, फिर कहते हैं ये इसके साइड इफ़ेक्ट। भाई इलाज क्या है जो फिर एक बीमारी छोड़कर दो और लग जाएं तो इसके साइड इफ़ेक्ट और फिर ये इलाज क्या। इसलिए ये सारा कुछ है कि ये सारा कारोबार हो गया है। हमें गरज नहीं है कि किसी को शफा मिले, कुछ ज़िंदा रहे या उसकी ज़िंदगी जो है तमाम हो जाए। एक बिलमूम रवैया ऐसा होगा कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो भी खेल तमाशा बन गई है, उसे भी कारोबार में मुंसलिक कर दिया जाए। तो जो तिब है वो किसी भी नुस्खे का वो हिस्सा जो सिर्फ इलाज वाला है उसका इंतखाब नहीं करती, बल्कि उस इलाज के साथ जो मुज़िर असरात हैं वो भी उसी, अगर एक पत्ते में किसी शय का इलाज है तो मुज़िर असरात का तदारुक भी कुदरत ने उसी एक पत्ते में पैदा फरमाया होता। तो तिब वो पूरा पत्ता जो है उसे दवा की सूरत में देती है और एलोपैथी जो है वो उस पत्ते से वो एक हिस्सा उठाती है जिससे उसे उस ख़ास बीमारी के लिए दवा दरकार होती। तो जो मुज़िर असरात हैं उसका तदारुक बाकी हिस्से में जिसे नहीं उठाया जाता। लोग बीमार होंगे, दवाई बिकेगी तो कारोबार चलेगा ना। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की वलादत बसआदत हुई तो जो वो ज़माना था आपकी बेसत का जो ज़माना है उसमें लोग बड़े तकड़े तबीब थे, बीमारियाँ भी बड़ी सख्त थीं लेकिन तबीब जो हैं वो भी बड़े तकड़े थे। अब उसमें जो उस खसूसियत को ज़ात से मुंसलिक करके अपनी अना जो बयान की जाती थी और मखलूक खुदा पर अपना ज़ोम और अपनी कुव्वत जो है वो दिखाई जाती थी, उसके मुकाबले में अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम को जो मुजज़ात अता फरमाए उसमें वो अत्तबा जो हैं उनके भी सर जो हैं चकर आ गए। इसलिए अगर मिट्टी सी ही बात की जाए तो मिट्टी से अल्लाह ने वजूद पैदा फरमाया। अब जितनी दवा या गज़ा है उसका सबब भी बुनियादी तौर पर मिट्टी ही है और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने मौजज़ा अता फरमाया कि आप मिट्टी उठाते हैं उससे शक्ल बनाते हैं और उस पर आप दम फरमाते हैं, फूंक मारते हैं अल्लाह के नाम से और वो जिंदा हो जाता है। बीमार की शफा और हयात का नसीब बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई ज़िंदा है तो उसकी बीमारी पर बात हो रही है ना, तो जब उसकी बीमारी पर बात हो रही है तो फिर उसके इलाज की बात आ रही है। यहाँ तो शय का वजूद कोई नहीं, आपने मिट्टी उठाई उसे गूंदा, एक शक्ल बनाई परिंदे की, उस पर अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी और वो जिंदा परिंदा हो। बीमार की शफा और हयात का नसीब फरमा, बहुत बड़ा फासला। जितना मर्जी बड़ा कोई तबीब हो, जितने मर्जी उसके तजर्बात हों, जितना मर्जी उसने तहकीक की हो, ये उसकी जो हदूद हैं उसमें ही नहीं है, वो इसे क्या समझ पाएगा। और ये क्यों है? इसलिए है कि ये तकवीयत हो, समझने में आसानी हो कि हक क्या है, और जो अल्लाह जल्ला शानू की कुदरत है उसका इजहार मकसूद है। इसी नस्बत को जब आप ज़ात या अपने मामलात में लेते हैं, तो कहीं किसी जगह कोई घर के आदत मामला किसी को भी पेश आए, उसे इसी नस्बत से देखना चाहिए, इसलिए कि यही उसका दुरुस्त अंदाज है। जहाँ कोई ज़ात से उसको मंसूब करेगा, तो उसका ज़ात से मंसूब करना उसको डुबोने के लिए काफ़ी है। ये इतना बड़ा पत्थर बन जाता है जो अपनी अनानियत इतनी पैदा कर देता है कि ये फिर सिर्फ नुकसान है। और क्या पहलू? तकवीयत के लिए नुकसान क्यों बना? इसलिए नुकसान बना, हमने उसका असल छोड़ दिया। ये जो लताइफ, मुराकबात, मुशाहदात, तरबियत, ये सारे पहलुओं में जहाँ जहाँ कोई बात, कोई शय पेश आए, या जहाँ मशाइख़ अज़ाम की बात या उनके वाक़ात बताए जाते हैं, तो इस सारे का मकसद ये नहीं है कि किसी की ज़ात को मानना चाहिए। सैकड़ों, हज़ारों ना हो तो सैकड़ों ज़रूर हैं, जिस वक़्त नशिस्त होती है तो उस वक़्त लोग जो आते हैं उनकी बातें भी सुनी जाती हैं, और उनकी उस सवाल या उस बात के जवाब में जो हो सके वो किया भी जाता है, दुआ भी होती है। अब कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आकर ये कहते हैं कि जी आपने ये दम किया या आपने ये चीज़ दी तो मैं बिल्कुल, मुझे शफा मिल गई। मैं बड़ा सादा और बड़ा वाज़ेह उन्हें अर्ज़ करता हूँ कि ये अल्लाह करीम की अता है, ये सारे सबब हैं। अब ये आम बात नहीं है, एक बंदा आए बीमार, उसे आपने दम किया और वो दुरुस्त हो जाए, उसने कोई दवा नहीं ली, कोई ग़िज़ा ऐसी नहीं ली, और उसकी बीमारी जब दुरुस्त हो जाए, ये आम बात नहीं, और वो ख़ुद मान रहा है और उसका इजहार कर रहा है। लेकिन यहाँ नुक्ता जो है वो क्या है? नुक्ता ये है कि जिस तरह तबीब दवा देता है या तबीब तशखीस करता है, अब उसे क्या मालूम कि रात आपने क्या खाया, लेकिन वो आपकी नब्ज़ देखकर कह देता है कि फ़लाँ बादिश है आपने खाई है जिसकी वजह से ये आपको मसला पेश आ रहा है, या वो आपको कहता है ये शय ना खाना, खाओगे तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, इसलिए कि आपकी नब्ज़ से आपका मिजाज भी समझ रहा है, मौजूदा बीमारी और उसकी हालत को समझ रहा है, और जो ख़ुराक है उसके असरात को वो जानता है, उसे मालूम है इस मौसम में क्या फल है, इस मौसम में क्या सब्ज़ी है, वो जानता है। तो जब वो जो बीमारी बढ़ाने वाला हिस्सा है वो आपको मना कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो गैब जानता है। या वो आपको दवा दे रहा है और यही चीज़ें शायद हों जिन्हें हम जानते हों, लेकिन उनकी तरतीब वो अपनी मर्ज़ी से करके आपको खिला रहा है, हमारे ही बावर्ची खाने से हमारे लिए एक हकीम नुस्खा बना देता है, और वो हमारे बावर्ची खाने में पड़ा होता है, हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, वो दो तीन चीज़ों की आमेजिश करता है, एक चम्मच हमें आधी सी बना देता है, कहता है ये आप पानी से खा लो ठीक हो जाओ, तो क्या उसे हम गैब कहेंगे? इल्म के हिस्से तो हैं, उसकी अपनी एक काविश तो है, उसकी तहकीक तो है, यानी सबब है। अब नतीजे पर जब बात आएगी तो क्या होगा? अल्लाह करीम की अता है। इसलिए जो शय दे रहा है उस शय का होना मालिक के हुक्म से है, उस शय में जो असर है ये उसके हुक्म से है, और ये जो सारी तरतीब बन रही है, पूरा सबब बन रहा है, ये उसकी अता से है, इसमें किसी का ज़ाती कमाल नहीं। तो जब दवा सबब है, तो इसी तरह जब बात दम की आएगी तो क्या ये सबब नहीं होगा? तो जब ये सबब होगा तो अता तो अल्लाह की हुई, फिर बात ज़ात की तो कौन आ रहे। इसलिए ये बारीक बारीक बातें जिन्हें हम समझते हैं, असल में ये बहुत बड़ी नाजुक हिस्से हैं जिन्हें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। अगर दम करके किसी की सेहत का सबब है तो जो दम कर रहा है, जो साहिब दम है, वो आप खुद जो है वो सेहतमंद है। अजीब बात है कि जैसे मिस्त्री मकान तामीर कर रहा होता है, उसका अपना मकान गिरा होता है, जूती गांठने वाले की जूती टूटी हुई होती है, तो जब मैं किसी को दम कर रहा हूँ या तावीज़ दे रहा हूँ, तो मेरे अपने हाथ में जो छड़ी है जिसके सहारे से मैं चल रहा हूँ, इतना ही कमाल या इख्तियार मेरा है तो मैं अपनी छड़ी तो छुड़ा लूँ। लेकिन इन तमाम पहलुओं को जहाँ भी पेश है या जो वाक़या आप सुने, उसी उस नस्बत से न लें कि ये कमाल अब वहाँ था, अब मैंने ये कमाल हासिल करना। जो बात कमाल की है वो ज़ात की नफ़ी की है, वो कमाल इत्तबा में है। कमाल अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात और उसकी शान का इकरार जो करना, इसमें है। ये बंदगी की मेराज है, अल्लाह जल्ला शानू जो है उसकी ज़ात, उसका ताल्लुक, उसकी पहचान, उसकी रज़ा, उसका कुर्ब, ये हिस्से और पहलू नसीब। अब ये कोई आम बात तो नहीं है ना जी कि मिट्टी से एक परिंदा बनाया, उसे आपने फूंक मारी, दम किया और वो उड़ना शुरू हो गया। ये कोई आम बात तो नहीं, आम बात है तो मखलूक करके देख ले। नहीं, वो जो लोगों का मुआलिज थे और उनका इलाज कर रहे थे और अपनी जो उनका हुनर है या उनकी शनासाई है या अपना इल्म है, उसके ज़ोम में थे, मुबतला थे, अल्लाह करीम का रसूल मबूस हुआ, तो वो हैरत ज़दा रह गए। तो बुनियादी बात या जो नुक्ता है, मौजात की बात आए, करामात की, मौजात के तहत करामात, तो मकसद दीन है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात है, अल्लाह जल्ला शानू की रज़ा है, उसके अम्बिया और रसूल का मबूस फरमाना और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत से नवाजना, हमारे लिए बहुत बड़ा कमाल जो है कि ये हक मानना नसीब हो और इस हक पर अमल पैरा होना नसीब। और बहुत बड़ी जो कामयाबी है कि ईमान के साथ इस इम्तिहान से हम गुज़र जाएं। हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ बैठा था और मनाज़र सलूक पर बात हो रही थी, वो फरमाने लगे, लोग मेहनतें करते थे तरक्की दर्जात के लिए, अल्लाह अल्लाह करते थे और बड़ी मेहनत और मुजाहदा करते, वो फरमाने लगे कि इतनी इनतात पैदा हो चुकी है कि फ़ी ज़माना अल्लाह अल्लाह इसलिए की जाए कि हम अपने ईमान सलामत ले जाएं। और वो फरमाते थे कि अगर बरज़ख में कोई उतरा और वो जो बख्शिश की एक लाइन है, उस लाइन को अबूर करना उसे नसीब हो गया, आप फरमाते थे कि इस वक्त में वो बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। हम मानते तो हैं, हमारा इकरार तो है, लेकिन वो इकरार ऐसे झूल रहा है, उसमें झूल है, बेयकीनी की कैफियत। तो ईमान में बेयकीनी जो है वो ईमान बाकी नहीं रहने देती। जाएंगे जी आखरत में, जाने क्या हो, तो फिर सारा कुरान जो इरशाद फरमा रहा है इसके मुनकर हो गया। जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितनी ही बरज़ख के हालात आदि शरीफ में बयान फरमाए, फिर जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका इनकार कर रहे हो, या मशकूक जो है इसको इकरार कहा जाएगा या इकरार माना जाएगा। तो आप फरमाया करते थे कि एक वक्त था कि लोग तरक्की दर्जात के लिए मेहनत करते थे, लेकिन उस वक़्त में बिलअमूम लोग जो थे उनका इतना पुख्ता यकीन था कि अगर जान भी चली जाए वो वहदानियत बारी ताला पर मुतज़ब्ज़ब भी नहीं होते थे, बड़े मजबूत थे, मानते। आज ज़रा सा कुछ हो जाए तो हमारी शिकायत, हमारे अल्फाज, हमारे अंदाज ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि जो मोतरिज का अंदाज होता है ना, अल्लाह के फैसलों पर हमें इतराज़ है, ऐसी सूरत होती है। अपने लिए हम कम जीते हैं, दूसरों के लिए हम ज़िंदगी जो है वो बसर इस तरह कर देते हैं कि हमें ये तकलीफ़ या रंज होता है, वहाँ क्यों ऐसा है, यहाँ क्यों ऐसा है। आला, अगर दूसरों के लिए ईसार की ज़िंदगी बसर की जाए तो अल्लाह की रज़ा नसीब होती। हमें ईसार के नहीं, हमें यही फिक्र खाई जाती है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों और मेरी ज़ात कहाँ है। हालाँ अगर अपना तजिया किया जाए, बहुत बड़ा बादशाह है, बड़ी कुव्वत का हामल है, एक मच्छर ने उसे हेज कर दिया। हमें अपनी मामूलात ज़िंदगी में एक हिचकी जो है ना, वो जहाँ बरना होने दे। दावे कैसे हैं, हमारे अंदाज कैसे हैं, क्यों? हमें ज़रूरत है कि ये जो अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाए हैं, इससे जो मौजज़ात हैं, क़ुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। सोच अमल तो अमल, सोच को ले आओ और क़ुरान करीम के तराजू पर रखो, बेहतरीन हल अता फरमाएगा। अब उसे इख्तियार तो मैंने और आपने करना है। तो यही एक बात जो कलाम ज़ाती हमारे सामने है, जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत सआदत से भी लगभग 500 साल पहले के हिस्से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक से पहले के ये हिस्से हैं जो कुरान यहाँ इरशाद फरमा रहा है। आपकी वालदा माजदा को अल्लाह करीम ने ये हिस्से अता फरमाए कि जो आपके बेटा हो वो क्या होंगे, उन्हें नबूवत अता होगी, किताब व हिकमत, तौरात व इंजील के उलूम, उनकी खसूसियात क्या होंगी, वो बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का रसूल उन्हें मबूस किया जाएगा, उन्हें मौजज़ात अता फरमाए जाएंगे। ये सारा कुछ हुआ नहीं, होना है, बेशतर इतला है। तो आज जहाँ हम हैं अपनी ज़िंदगियों में, ये ज़रूरी है कि हम अपने मामलात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रखें। दुनिया की ज़िंदगी, इसकी तकालीफ़, अक्वाम आलम के हालात और आज ख़ासकर आज जो दुनिया के हालात मज़ीद सख्ती के पेश खैमान जो है, ये हालात हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ताकत थी खुश्क सहरा में, जंगे बदर में जो लश्कर इस्लामी, क्या आलात हर्ब थे वहाँ पर, खुराक के कितने ज़खीरे थे, दिफा का कितना सामान था, सवारियाँ कितनी थी, सवारियाँ तो कुजा, खुराक नहीं थी, खाली पेट थे, क्या था ईमान। आज भी हमारी जो बुनियाद, हमारा दिफा, हमारी ताकत नूरी ईमान में है। तो कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी, ये हमारी ज़रूरत है। ये तजावजात, इसने इन तजावजात ने हमें कमज़ोर किया है। इस्लाम के नाम पर सल्तनतें हैं, इस्लाम नहीं है। इस्लामी नाम है लेकिन हमारे अंदर इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं है, चाहे शाह और गदा किसी की बात की जाए। तो जब अपनी असल नहीं होगी तो कमज़ोरी होगी, दुख होता है कि कैसे ज़ुबूं हाली से हम दो चार हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे की मुआवनत पर बयान करना या अपनी गुफ्तगू को ज़राए अबलाग तक पहुँचाना, उसमें भी ये मकसद नहीं है कि हम उनकी खैरखाई कर रहे हैं। उसमें भी हमारा मकसद ये होता है मेरा नाम भी लिखा जाए कि मैंने भी मजम्मत की है। आप सोचें ना जी, इससे आगे और कितना गिरेंगे। ये तो शुक्र करें अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई कि हमें अपने इस वतन अजीज़ की दिफा जो है उसकी कुव्वत अता फरमाई। यहाँ नहीं आप देखते कि कितना फसाद पैदा किया गया, कितनी कौम लड़ाई गई, कितनी बेतफाकी पैदा की गई, दीन के नाम पर हम कितने दस्तों गिरेबान। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि मजमूई तौर पर हमारी सूरत और हालात क्या हैं। सबसे बड़ी फिक्र ये है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वो कितना महफूज है और मेरी ज़ात को कितना माना गया। हर पहलू से होना दीन इस्लाम की तरफ तकवीयत देता है, और अगर तकवीयत दीन इस्लाम की निस्बत नहीं है तो फिर जहाँ ख़ता खा रहे उसकी निशानदेही कर लो, उसका तदारुक कर लो। दुनिया की ज़िंदगी भी इज़्ज़त की तभी है जब हक पर हो, और दुनिया से रवानी बहालत ईमान भी तभी है जब हक पर हो, और आखरत भी हक ही पर इनसार करेगी। ये सारे फैसले कुरान करीम में बयान फरमा दिए। अल्लाह करीम गफूर रहीम है, हमारी गलतियाँ और गुनाह माफ़ फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारे इस मुआशरे में हमारे ज़ात की जो ख़ताएँ और गुनाह हैं अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी जो ज़ात की ख़राबी है वो तो ना जाने दें मुआशरे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।